मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 28 नवंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में दो दिनों के बाद मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इन दो दिनों के विश्राम के बाद, आप देखिए शब्द ही है विश्राम, यानी कि श्रम का परिहार, दो दिनों के विश्राम के बाद अब आप अपने अंदर एक नई स्फूर्ति महसूस कर रहे होंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और सच पूछिए तो मन से भी। मित्रों, इस बीच में जो आप लोगों ने मेल लिखे, मैं इस बात के लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इससे पहले जो दो टॉपिक रहे, साउंड ऑफ साइलेंस और प्रेम, इन दोनों पर आप लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं मिली हैं। और मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि आप सब अपने आप को एक एक्टिव लिसनर के रूप में कन्वर्ट करें, सबके सब, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूं। एक्टिव लिसनर कहने का मतलब है कि जब भी आपको कोई चीज पसंद आती है, ना पसंद आती है, या कोई चीज ऐसी होती है कि आपके दिमाग में विचारों कि खलबलियां मचने लगती हैं, तो यू शुड रिएक्ट, यू शुड रिप्लाई, आपको अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए, बात कहनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे नो डाउट कि आपके अपने दिमाग का स्नान तो हो ही जाता है। मैं स्पेशली वर्ड यूज कर रहा हूं दोस्तों, स्नान, जिसे अंग्रेजी में आप बाथ लेना कहते हैं, BATH, क्योंकि हमारे दिमाग में जब विचारों का तूफान उठता है और यदि हम उसे रोके रखते हैं तो फिर वहीं उमड़ घुमड़ करके वहीं दम तोड़ देते हैं वो विचार, और वो फिर कुंठाओं के रूप में या और दूसरे तरह के स्वप्न और प्रतिक्रियाओं के रूप में हमारे दिमाग में दुबके रहते हैं, जो परेशान करते हैं। और यदि हम उन्हें व्यक्त कर देते हैं तो हमें एक बहुत ही एक अलग किस्म की राहत की अनुभूति होती है। इसलिए आप लोग एक्टिव जब लिसनर बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि न केवल मुझे ही आपकी प्रतिक्रियाएं मालूम होंगी, बल्कि सच यह है कि आपको भी अच्छा लगेगा, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने अपने आप को पेश कर सकूंगा। न केवल अच्छे तरीके से ही पेश कर सकूंगा, बल्कि सच पूछिए तो उन बातों के साथ पेश हो सकूंगा जो आपके लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले सप्ताह किसी एक दिन आपसे वायदा किया था कि मैं साउंड ऑफ साइलेंस पर थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली कि इस पर थोड़ी सी बात और की जाए। मैं जानता हूं फ्रेंड्स, आप लोगों की ये जो डिमांड है ये बिल्कुल 100% परफेक्ट है, इसलिए कि जो फर्स्ट पार्ट हमारा था, अगर इससे पहले वाले लेक्चर को हम फर्स्ट पार्ट मान लें, उसमें सैद्धांतिक बातें ज्यादा थी। नो डाउट सैद्धांतिक बातें बेकार नहीं होती हैं, अव्यवहारिक नहीं होती हैं। सच पूछे तो सिद्धांत ही तो वह नींव होती है जिस पर व्यवहार की इमारत खड़ी होती है, तो वो भी उतनी उपयोगी थी। और सच पूछे तो उन सैद्धांतिक बातों ने ही तो आपको इसके व्यवहारिक पक्ष को जानने के लिए प्रेरित किया है, वही उसकी उपयोगिता भी है। और अब जब आप इसके थोड़े से व्यवहारिक बातों को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि उन सैद्धांतिक बातों को जानने के बाद आप अब इन व्यवहारिक बातों को कितने अच्छे तरीके से जान पा रहे हैं, कितने सरलता से जान पा रहे हैं, और सच पूछे कितनी गहराई तक उतर भी पा रहे हैं, आप इसका मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। एक बात तो मैं मित्रों आपको ध्यान होगा कि बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, या यूं कह लीजिए कि एडवाइस देता रहता हूं, कि मैं जितनी भी बातें कहता हूं, मैं नहीं मानता मित्रों कि वो सारी की सारी 100% आपके ऊपर लागू ही होंगी, क्योंकि हर के ऊपर हर चीज लागू नहीं होती है। लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं कि मेरी कोशिश होती है कि वो बातें ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक हों। मैं चाहूंगा कि आप उनको अपने ऊपर लागू करें, प्रैक्टिकली उसका अनुभव लें, और अगर कहीं फेलियर आपको लगता है तो फिर मुझे सूचित करें ताकि मैं अपने आप में और भी सुधार ला सकूं। तो मित्रों, जो हम साउंड ऑफ साइलेंस की बात कर रहे थे, अब उसके हम थोड़े से व्यावहारिक पक्ष को देखते हैं, है ना। वैसे तो साउंड ऑफ साइलेंस टॉपिक ही अपने आप में इतना अट्रैक्टिव है, शीर्षक ही इतना अट्रैक्टिव लगता है, हमें लगता है कि जैसे ये कोई आध्यात्मिक दुनिया की बात हो रही है, किसी जादू की बात हो रही है, करिश्मे की बात हो रही है, हमें ऐसा महसूस होता है, क्योंकि हम यही मान करके चलते हैं कि साइलेंस का मतलब भी एब्सेंट ऑफ साउंड, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि साउंड ऑफ साइलेंस कि मतलब मौन की भी एक ध्वनि है, उसकी भी एक आवाज है। मित्रों, अब उसके मैं व्यावहारिक पक्ष पर थोड़ा सा आता हूं कि ये जो साउंड ऑफ साइलेंस का जो सिद्धांत है, जो विचार है, उसका हम सब कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्या करें कि हमें वह सुनाई दे। दोस्तों, अवचेतन के मन की बात मैंने पहले बता चुका हूं, अब उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब हम साइलेंस की बात करते हैं, साइलेंस का मतलब क्या है? हिंदी में बड़ा प्यारा शब्द है, मौन। मौन, देखिए कि इस मौन में क्या शब्द है। ये मौन किससे बना है? ये मौन मन से बना है। इसमें मन है, मौन में मन है। फिर आप देखिए मंत्र, मंत्र, मंत्र में क्या है? मंत्र में भी मन है, मन है ना, तभी उसी से मंत्र बना है। और मैं मौन और मंत्र को इसलिए जोड़कर बता रहा हूं यहां कि क्योंकि जो आपको साउंड ऑफ साइलेंस जो सुनाई देगा, वो भी लगता है जैसे कि कोई मंत्र है। मंत्र है क्या? मंत्र मतलब ताकत ही है, शब्दों की ताकत, वही मंत्र है ना। सामान्य अर्थ कुछ है, लेकिन उसके जो असाधारण जो अर्थ है, असाधारण जो शक्ति है, वो अद्भुत है, वही मंत्र है। इसके बाद मित्रों, एक और शब्द दिमाग में आ रहा है, वो है मुनि। जैन में, जैनियों में आप अक्सर देखिए कि उनके जो साधु संत जिन्हें हम कहेंगे, उन्हें वो मुनि कहते हैं, जैन मुनि। मुनि, मुनि में भी क्या है? मन। ऋषि मुनि, हम भी जो ऋषि मुनि शब्द कहते हैं, उस मुनि में भी मन है। यानी कि हर जगह मन, जहां भी कोई बड़ी शक्ति की बात हो रही है, अद्भुत क्षमता की बात हो रही है, वहां मन है। हम मौन के अद्भुत क्षमता की बात कर रहे हैं, हम मंत्र के अद्भुत क्षमता की बात कर रहे हैं, और हम मुनि में भी असाधारणता देखते हैं। वो भी एक अद्भुत, एक विलक्षण क्षमता की बात है, एक विलक्षण क्षमता से संपन्न वो जो व्यक्ति है, उसे हम मुनि मान रहे हैं। हम वेशभूषा पर न जाए, हम मुनि मान रहे हैं। तो मित्रों, इन सब में है मन। याद रखिए कि साइलेंस का जो संबंध है, जो सबसे बड़ा संबंध है, वो इसी मन से ही है। साइलेंस का इस बात से कोई संबंध नहीं है मित्रों कि आपके बाहर कितना शोर हो रहा है या आपके बाहर कितना साइलेंस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि आपकी साधना इतनी अद्भुत हो कि बाहर के शोरगुल आपके अंतर मन तक पहुंच ही ना सके, उसका कुछ न बिगाड़ सके। कान सुन रहे हैं लेकिन मन सुन ही नहीं रहा है, मन शांत है। देखिए, मन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि सभी चीजों को ट्रांसलेट करता है। ये मन का ही करिश्मा। मन अगर ट्रांसलेट करना बंद कर दे, किसी चीज को समझना बंद कर दे, तो उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं आपसे बड़ी उल्टी सीधी गाली गलौज करता हूं, एक ऐसी भाषा में जो भाषा आप जानते ही नहीं है, तो मैं कितनी भी बुरी गालियां दे दूं, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मन उसका ट्रांसलेशन ही नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि जो सारी जो जड़ है वो मन है। और लोगों ने ऐसा दोस्तों किया है। आप कभी ग्राहम बेल की जीवनी पढ़िए, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। जो ग्राहम बेल है, वो बोस्टन की एक ऐसे चौराहे पर, एकदम भीड़ भाड़े चौराहे पर, जहां चिल्पो 24 घंटे मची रहती थी, मतलब रात में नहीं मचती होगी, उस चौराहे पर के सेकेंड फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा और उस तरह का कमरा था। उस जमाने में आज जैसी सुविधाएं नहीं होती थी। उस कमरे में रहते थे, बहरे और गूंगे स्कूल में जाकर के पढ़ाते थे बच्चों को, और बाकी समय में टेलीफोन का आविष्कार करते थे। मतलब आप देखिए कि टेलीफोन जैसा आविष्कार उन्होंने शोरगुल वाले चौराहे पर बने हुए एक छोटे से कमरे में किया है। यानी कि जो बाहरी शोरगुल था, उसका ग्राहम बेल की अपनी साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मित्रों, जिसे हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, और मैंने देखा है कि मेडिटेशन का तो कुछ जादू ज्यादा ही लोगों के सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है, इसलिए कि हर कोई परेशान है, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि वो परेशान किससे है और मेडिटेशन करेगा क्या। आप परेशान, आप बाहरी वातावरण से नहीं है, आप अपने मन से परेशान है, और मन से इसलिए परेशान है क्योंकि बाहरी वातावरण को आपका मन ट्रांसलेट कर रहा है। आप क्यों नहीं इतनी हिम्मत जुटा पाते कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी तो जरूरत है ही नहीं, जैसे ही आपका मन इन सब का तिरस्कार करने लगेगा कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बंगला नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़े बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, आप देखिए कि आपका मन शांत होने लगेगा, और मन शांत होने लगे मेडिटेशन होने लगेगा। ये मेडिटेशन मात्र आपको अपने मन की उछल कूद को नियंत्रित करने का एक पगहा है। पगहा आप समझते हैं ना, गांव में बड़ी मोटी रस्सियों के लिए पगहा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बहुत मोटी रस्सी है जिसमें अगर आप अपने मन को बांध देते हैं जिससे, तो फिर मन की मजाल नहीं होती कि वो इधर उधर भाग सके और मन शांत हो जाता है। मेडिटेशन वही है कि किस तरीके से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो मौन सधता है, याद रखिए, जो सच्चा मौन सधता है वो हिमालय की गुफाओं में जाकर नहीं सधता। जो सच्चा मौन सधता है वो कहीं भी सध सकता है, बसरते कि आप केवल इसके इस अर्थ को समझ लें कि मन अपनी कारस्तानी बंद कर दे, उछल कूद मचाना कम कर दे। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, साइकोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च किए हैं कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं। हमारे दिमाग में आप कल्पना करके देखिए कि एक दिन 24 घंटे के अंदर 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं, और दुर्भाग्य की बात तो यह होती है कि उसमें से कोई नया विचार नहीं होता, सब पुराने विचार ही नए नए तरीके से बस आते रहते हैं। आप सोच करके देखिए कि क्या जब 60,000 विचारों की चहलकदमी हमारे दिमाग में चल रही हो तो क्या हमारा दिमाग शांत रह सकेगा। ये तो उसी तरह से हुआ जैसे कि एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन से हम उम्मीद करें कि वहां शांति होगी, तो अंदरूनी तौर पर बहुत अशांति मची हुई है। तो मित्रों, इस अशांति के रहते आप कभी मत सोचिएगा कि नौकरी छोड़ देंगे तो शांत हो जाएगा, शादी नहीं करेंगे, परिवार नहीं बनाएंगे तो जिंदगी शांति से कट जाएगी, और अपना काम करेंगे तो शांति हो जाएगी क्योंकि फिर बॉस का बॉसिज्म नहीं रहेगा, शहर छोड़ के गांव चले जाएंगे तो शांति हो जाएगी। नॉट एट ऑल, ये सब ऊपरी उपाय हैं जो काम नहीं करते हैं। अगर आपको मौन चाहिए और मौन के उस साउंड को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसकी सबसे बड़ी पहली और मुझे लगता है कभी कभी की एकमात्र शर्त यह है कि आप अपने मन को शांत करें। मन में जो विचारों का, इच्छाओं का, कामनाओं का, लालसाओं का लगातार जमघट लगता चला जा रहा है, उस पर नियंत्रण रखिए। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दीजिए। नॉट एट ऑल, वो एक अलग मुद्दा है, इसको आप स्ट्रेट तरीके से मत लीजिएगा कि कहीं मैं संन्यास की बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। संन्यास आपको और ज्यादा परेशान करेगा, इससे भी ज्यादा परेशान करेगा। फिर आप यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, आप प्रकृति के विरोध में जा रहे हैं, वो एक इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होगी। तो मेरी बातों को थोड़ा सा व्यावहारिक स्तर पर लीजिएगा। मन को शांत करना है, इसी समाज में रह के करना है, परिवार में रह करके करना है, जीवन को चलाते हुए करना है, अपने दायित्वों को निभाते हुए करना है, और ऐसा किया जा सकता है। बल्कि सच पूछे तो मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है ऐसे ही किया जा सकता है, ऐसे ही किया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये मेरे आज के लाइफ मैनेजमेंट का छोटा सा पार्ट था जो आप लोग चाह रहे थे, वह विषय मैंने लिया। दोस्तों, एक बात के लिए मैं माफी चाहूंगा, मैंने बहुत पहले आप लोगों से कहा था कि लाइफ मैनेजमेंट के अंत में मैं कुछ दो लाइन, चार लाइन, कोई कोट और इस तरह की बातें रखूंगा, लेकिन जब कोई टॉपिक दिमाग में आता है और मैं आप लोगों से बात करने लगता हूं तो आप लोगों की शायद इतनी जबरदस्त ताकत है कि फिर मैं एक बहाव में आ जाता हूं, और बहने के दौरान जब तब खत्म होता है तो मुझे लगता है कि अरे ये तो टाइम अभी इजाजत ही नहीं दे रहा है कि मैं और आगे कुछ बोलूं, और मुझे वहीं बात खत्म करनी पड़ती है। और आज मैंने सोचा था कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि टाइम फिर से ऑलरेडी सीमा से बाहर निकल चुका है और मैं मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता। तो मित्रों, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि उस रिदम में वो चीज शामिल नहीं हो पा रही, लेकिन मेरी कोशिश है, मैं उस संघर्ष में लगा हुआ हूं कि मैं अपने उस टॉपिक के रिदम में उसे शामिल कर सकूं। मैंने वायदा किया है, मैं निभाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दीजिए। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह लाइफ मैनेजमेंट यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।